नमस्कार, मैं सौरभ डीएनए में आपका स्वागत करता हूं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जारी चर्चा के दूसरे दिन आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये ऐसा अविश्वास प्रस्ताव है जिसका मकसद सिर्फ जनता के बीच भ्रम पैदा करना है। अपने बयान में उन्होंने सरकार के काम तो गिनाए ही, मणिपुर हिंसा पर भी विपक्ष के एक एक सवाल का विस्तार से जवाब दिया। इसीलिए आज हम होम मिनिस्टर अमित शाह के इस भाषण का विश्लेषण तो करेंगे ही, सरकार द्वारा मणिपुर में उठाए गए कदमों का भी डीएनए टेस्ट करेंगे। इसके बाद हम चांद पर पहुंचने की रेस का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। धरती से चंद्रमा की तरफ जाने वाले हाईवे पर ट्रैफिक बढ़ने वाला है। भारत के चंद्रयान 3 के बाद अब रूस 11 अगस्त को अपने मिशन मून को लॉन्च कर रहा है। रूस ने इसे नाम दिया है लूना 2.5। इस मिशन को सफल बनाने के लिए रूस शक्तिशाली रॉकेट का इस्तेमाल करेगा, जिससे लूना 2.5 सिर्फ 5 दिन में ही चांद की कक्षा में पहुंच जाएगा। वैसे भारत और रूस ही नहीं, इसके बाद 26 अगस्त को जापान भी अपने मिशन मून को उड़ान देगा। सवाल है कि अचानक कई देश मिशन मून में इतनी दिलचस्पी क्यों लेने लगे हैं? क्या ये किसी कॉम्पिटिशन का हिस्सा है? इसके अलावा आज हम इनकम टैक्स पेयर्स को साइबर फ्रॉड से बचाने वाला डीएनए टेस्ट भी करेंगे। आईटीआर फाइल करने के बाद अगर आप भी अपने रिटर्न के प्रोसेस होने और रिफंड आने का इंतजार कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको इनकम टैक्स रिफंड से जुड़ा कोई एसएमएस आए और फिर जैसे ही आप एसएमएस पर रिप्लाई करें वैसे ही आपका अकाउंट खाली हो जाए। हम आपको डरा नहीं रहे, बल्कि कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, इसीलिए हमने आपको इनकम टैक्स रिफंड वाले इस फ्रॉड से बचाने वाला विश्लेषण तैयार किया है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। चलिए अब डीएनए में खबरों के विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में दूसरे दिन की बहस काफी गर्मा गर्म रही। आज राहुल गांधी ने करीब 35 मिनट का समय लिया और शुरुआत एक ऐसे नाम के साथ की जिसको लेकर उनको और कांग्रेस पार्टी को कई बार बीजेपी ने घेरे में लिया। मुख्य तौर पर अविश्वास प्रस्ताव की बहस 3M के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। इसमें पहला है मणिपुर, दूसरा है महिला और तीसरा है मोदी यानी नरेंद्र मोदी। विपक्ष के हर नेता की तरह आज राहुल गांधी ने भी अपने भाषण को इन्हीं 3 हिस्सों में बांटा हुआ था। उन्होंने मणिपुर हिंसा पर सरकार को घेरा, उसके बाद हिंसा का असर महिलाओं पर किस तरह पड़ रहा है उसका जिक्र किया। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर ना जाने का मुद्दा उठाया और महिलाओं के एंगल से मुद्दा उठाकर मणिपुर की हिंसा को भारत माता की हत्या से जोड़ दिया। जिस मुद्दे के साथ आज राहुल गांधी ने बहस की शुरुआत की वो मुद्दा अडानी का था, और जिस मुद्दे के साथ राहुल गांधी ने अपना भाषण समाप्त किया वो था भारत माता की हत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना। राहुल गांधी ने आज केंद्र सरकार पर हमले की एक खास रणनीति चुनी थी, उसके लिए वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। यही वजह है कि जब उनका भाषण समाप्त हुआ तो उसके बाद वो जवाब सुनने के लिए एक मिनट भी सदन में नहीं रुके। राहुल गांधी ने आज सबसे पहले मणिपुर को अपनी राजनीतिक जंग का ग्राउंड जीरो बनाया। इस ग्राउंड जीरो पर हिंसा के हालात बताते हुए केंद्र सरकार की नाकामी का जिक्र किया, फिर वहां रिलीफ कैंप्स की हिंसा पीड़ित महिलाओं की कहानी सुनाकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आखिर में उन्होंने मणिपुर के हालात को देश का हालात बताते हुए भारत माता की हत्या होने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ही नहीं, पूरे विपक्ष को मालूम है कि अविश्वास प्रस्ताव पर अगर वोटिंग हुई तो भी सरकार पर कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कुछ खास मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करना चाहता है। यही राहुल गांधी का आज का बयान हो या विपक्ष के नेताओं का केंद्र सरकार के खिलाफ दिया गया कोई भी भाषण, ये सब वर्ष 2024 के चुनावों की तैयारी है। राहुल गांधी ने आज मणिपुर में हो रही हिंसा पर सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए। उन्होंने यहां तक कहा कि सरकार अगर चाहे तो सेना भेजकर हालात काबू में कर सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही। राहुल गांधी का यही इशारा था कि केंद्र सरकार वर्ष 2024 के चुनाव से पहले ऐसे ही हालात बनाए रखना चाहती है।
कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई ये है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर गया और मणिपुर के कैंप्स में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। मैं बहुत सारी महिलाओं से बात किया, मगर मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है मेरा छोटा सा बेटा,
महिला का सम्मान करें,
ये सम्मान। एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटे के बारे में, बेटों के बारे में सोचिए, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। झूठ नहीं, झूठ आप बोलते हो, झूठ मैं नहीं बोलता हूं। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही और फिर मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा कुछ तो लाई होगी, कहती है नहीं, सिर्फ मेरे जो कपड़े हैं ये मेरे पास हैं। और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है ये ही मेरे पास अब बची है। एक और उदाहरण, दूसरे कैंप में मैं, एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ? जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ,
हम नहीं है तेरे को,
वैसे ही एक सेकंड में वो कांपने लगी। उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई, मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। तो ये मैंने आपको सिर्फ दो उदाहरण दिए हैं। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है, हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है।
राहुल गांधी के मणिपुर हिंसा पर दिए गए इस भाषण के बाद लोकसभा में काफी हंगामा हुआ। उन्होंने रिलीफ कैंप्स की महिलाओं का दर्द जब सदन में रखा, तब तक सदन के हालात फिर भी सामान्य कहे जा सकते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने जोश में आकर मणिपुर के हालात को देश के हालात बताते हुए हिंदुस्तान की हत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, वैसे ही लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया।
भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की, इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के ने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देश भक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देश द्रोही हो, आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज प्लीज।
राहुल गांधी के भाषण के इस हिस्से से सत्ता पक्ष गुस्से में लाल हो गया। वजह ये थी कि इस हिस्से में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को रावण की लंका बताया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला किया। इस हिस्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, होम मिनिस्टर अमित शाह और अडानी का भी नाम लिया गया। एक साथ एक बार में सत्ता पक्ष के दो बड़े नेताओं पर हमले हुए तो सत्ता पक्ष के नेताओं का भड़कना लाजमी था। राहुल गांधी के जोशीले सवालों का जवाब वैसे तो आज स्मृति ईरानी ने दिया, लेकिन जैसा कि सत्ता पक्ष को पूरी उम्मीद थी कि अब अमित शाह मणिपुर सवालों के जवाब देंगे तो उसके बाद विपक्ष के पास पूछने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा, ठीक ऐसा ही हुआ। अविश्वास प्रस्ताव के साथ ही विपक्ष ने केंद्र सरकार से मणिपुर हिंसा पर तीन मुख्य सवाल पूछे थे। उनका पहला सवाल था कि मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ बोला क्यों नहीं। दूसरा सवाल ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं गए। तीसरा सवाल ये पूछा था कि मणिपुर हिंसा के मामले में राज्य के मुख्यमंत्री पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आज जैसे ही अमित शाह ने सदन में बोलना शुरू किया तो लगा कि अन्य बीजेपी नेताओं की तरह वो मणिपुर के मुद्दे को बाईपास कर जाएंगे। होम मिनिस्टर ने अपने भाषण में सबसे पहले केंद्र सरकार की उपलब्धियों और यूपीए राज की नाकामियों के बारे में बताया, लेकिन इसके बाद जब वो मणिपुर हिंसा पर जवाब देने मैदान में उतरे तो विपक्ष के केवल तीन सवाल ही नहीं, जितने भी सवाल थे उनके जवाब उन्होंने एक बार में दे दिए। चलिए अब हम आपको 20 मिनट के अंदर मणिपुर हिंसा का इतिहास, वर्तमान और भविष्य को लेकर अमित शाह के भाषण के कुछ अंश दिखाते हैं।
मैं पास्ट में मणिपुर में क्या हुआ ये भी बताऊंगा। अब मैं जब बताऊंगा तब ये कहेंगे कि पुरानी बातों को हमें सुनाने के लिए कह रहे हो। ना जी, मैं संवेदनशील आदमी हूं माने, और मैं पुरानी बातों को राजनीतिक हिसाब किताब के लिए नहीं सुना रहा। इसलिए नहीं सुना रहा कि आपके समय में भी हुआ था, हमारे समय में भी हुआ, होता है। होता है का अप्रोच हमारा नहीं है, ये यूपीए का अप्रोच है। हमारा अप्रोच होता है का नहीं है, हम टॉलरेट नहीं कर सकते। मैं पुरानी हिंसाओं को इसलिए बताना चाहता हूं कि मणिपुर की नस्ली हिंसाओं के स्वभाव को जनता ने जानना पड़ेगा। नस्ली हिंसा मणिपुर में जब जब होती है तब किस प्रकार से होती है वो भी जानना पड़ेगा। इसलिए मैं पुरानी हिंसाओं को भी रखूंगा। आपके मन में ये भ्रांति न हो, ये सवाल न आए कि पुराना क्यों बता रहे। माननीय, 6 साल से, करीब करीब 6.5 साल से मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी तब से 3 मई तक एक भी दिन कर्फ्यू नहीं डालना पड़ा। मैं मेरी बात आग्रह के साथ कहना चाहता हूं, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 6 साल पूरे हुए। 6 साल में मणिपुर में एक भी दिन कर्फ्यू नहीं डालना पड़ा। मणिपुर के अंदर एक भी दिन बंद नहीं रहा। मणिपुर के अंदर एक भी दिन ब्लॉकेड नहीं हुआ और उग्रवादी हिंसा लगभग समाप्त हुई। ये 6 साल का भारतीय जनता पार्टी के शासन का इतिहास था। 2021 में हमारे देश की पड़ोस में म्यांमार में सत्ता परिवर्तन हुआ और म्यांमार में वहां पर मिलिट्री का शासन आया, डेमोक्रेटिक सरकार गिर गई और वहां पर एक कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट है, इसने लोकतंत्र के लिए आंदोलन चालू करा। जब कुकी डेमोक्रेटिक फंड ने लोकतंत्र के लिए आंदोलन चालू किया, वहां की मिलिट्री शासन ने इन पर कड़ाई करना शुरू की, दबिश बनाना शुरू की। और चूंकि म्यांमार की बॉर्डर फ्री बॉर्डर है, मान्यवर, वहां फेंसिंग नहीं है और आज से नहीं, आजाद हुए तब से नहीं फेंसिंग नहीं है, तो बहुत बड़ी मात्रा में मिजोरम और मणिपुर के अंदर कुकी भाइयों का वहां शरणार्थी नाते यहां आना शुरू हुआ। मैं इसलिए कहना चाहता हूं मान्यवर, क्योंकि उनका झगड़ा मणिपुर की मिलिट्री से था और दबिश शुरू हुई इसलिए म्यांमार की मिलिट्री से था और दबिश शुरू हुई इसलिए वो यहां पर आए। मान्यवर, हजारों की संख्या में कुकीज आदिवासी भाई यहां आना शुरू हो गए और परिवार बसने लगे। कहां बसेंगे? तो जंगल में बसने लगे और एक प्रकार से मणिपुर के बाकी हिस्सों में एक असुरक्षा की भावना हुई कि हमारी जनसंख्या बदल जाएगी। हमने उसको देखा। उसी वक्त मान्यवर हमने गृह मंत्रालय में 2022 में निर्णय किया कि अब ये बॉर्डर को खुला नहीं कर सकते, बॉर्डर बनानी पड़ेगी, फेंसिंग करनी पड़ेगी। हमने 10 किलोमीटर फेंसिंग पूरी कर दी है, 60 किलोमीटर का काम चालू है और 600 किलोमीटर का सर्वे चालू है। आपने 2014 तक कभी फेंसिंग नहीं की, हमने दूरंदेशी से 30 में दंगे हुए 21 में ही फेंसिंग का काम शुरू कर दिया था। 10 किलोमीटर ट्रायल फेंसिंग बन चुकी है, 60 किलोमीटर का काम चालू है और 600 किलोमीटर का सर्वे बाकी, जिससे ये घुसपैठ को रोका जा सके। फिर एक अनरेस्ट खड़ा होने लगा क्योंकि वहां जनसंख्यिकी बहुत निर्णायक होती है। मान्यवर घाटी में कुकी भाई रहते हैं, पहाड़ पर ट्राइबल भाई रहते हैं, तो उनके घाटी में मतई रहते हैं और पहाड़ पर कुकी और नागा ट्राइबल भाई रहते हैं, तो एक जनसंख्यिकी के बदलाव का बड़ा दबाव रहता है कि हमारी संख्या हम अल्पमत में आ जाएंगे। तो इसके लिए हमने लगभग जनवरी महीने से हमने वहां पर जितने भी शरणार्थी आए थे उनको एक परिचय पत्रक देने की शुरुआत की, उनका थंब इम्प्रेशन लिया, आई इम्प्रेशन लिया और थंब इम्प्रेशन और आई इम्प्रेशन को वॉटर लिस्ट और आधार कार्ड के नेगेटिव लिस्ट में डालने का काम किया। ऐसा नहीं है मान्यवर कि यहां गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम में कोई आंख मूंद कर सुआ। 2023 में दंगा हुआ, 21 में हमने फेंसिंग चालू कर ली, 22 में हमने फेंसिंग चालू कर ली और 23 की शुरुआत में हमने थंब इम्प्रेशन और आई इम्प्रेशन लेने की शुरुआत की और उसको भारत के वोटर लिस्ट और आधार के नेगेटिव लिस्ट में डालने की। फिर भी ये जिस प्रकार से संख्या बढ़ती गई, एक असुरक्षा की भावना मतई लोगों में फैलती गई। मान्यवर ये जो वहां पर एक फ्री रेजिम है, नेपाल की तरह वहां पासपोर्ट नहीं चाहिए। अब ये मत कहना है कि हमने क्यों नहीं करा, 1968 से करा हुआ है भाई, 1968 से समझौता है भारत और ब्रह्मदेश की सरकारों के बीच में कि बॉर्डर के 40 किलोमीटर से जो अंदर आएगा या यहां से 40 किलोमीटर से आएगा उसको पासपोर्ट नहीं चाहिए, ये समझौता है, किसी को रोकना भी असंभव। और इतने हजारों किलोमीटर की बॉर्डर में बाढ़ भी नहीं लगी थी, फेंसिंग भी नहीं थी, तो संख्या बढ़ती गई और असुरक्षा बढ़ती गई। इतने में एक अफवाह फैल गई 29 तारीख अप्रैल को कि 58 ये वसाहतें जो थी शरणार्थियों की उसको गांव घोषित कर दिया गया। अब गांव घोषित करने की अफवाह से ही घाटी में बहुत बड़ा अनरेस्ट शुरू हुआ मान्यवर, और वो अनरेस्ट को भी हमने माइक वाली जीपे चलाई, बताया गया कि भाई कोई गांव घोषित नहीं हुआ है, मगर अफवाह जब फैलती है तब फैलती है अविश्वास का वातावरण, और घोषित जंगल गांव घोषित किया, जंगल गांव घोषित किया जो वसाहतें थी उसको, तो उनको लगा परमानेंट अब यही बस जाएंगे, तो एक अनरेस्ट खड़ा हुआ। उसके बाद में आग में तेल डालने का काम हाईकोर्ट मणिपुर के अप्रैल महीने में आए हुए एक फैसले ने कहा, जिसने सालों से पड़ी हुई एक लंबित पिटीशन को अचानक चलाया, अचानक चलाकर ना भारत सरकार के ट्राइबल आयोग को शपथ पत्र लिया, ना भारत सरकार के ट्राइबल डिपार्टमेंट का लिया, ना भारत सरकार के गृह मंत्रालय का लिया, ना मणिपुर सरकार का लिया, और अचानक ही कह दिया कि 29 अप्रैल के पहले इस मतई जाति को ट्राइबल घोषित कर दिया। इससे पहाड़ पर बहुत बड़ा अनरेस्ट हुआ, ट्राइबलों में बड़ा अनरेस्ट हुआ कि अब मतई ट्राइबल बन जाएंगे तो हमारी नौकरियों में स्पर्धा का भाव होता है और स्वाभाविक है, एक कोई कानूनी प्रक्रिया के बगैर एक ऑर्डर कर दिया गया, जिसके कारण ऊपर भी नीचे ऑलरेडी अनरेस्ट चालू था, ऊपर भी अनरेस्ट हुआ और 3 तारीख को एक रूली के अंदर एक क्लैश होता है मैंने, और क्लैश होने के बाद दंगे चालू हुए जो अब तक अशांत परिस्थिति को बनाए हुए हैं। अब इस परिस्थिति को आप वो क्यों नहीं गया, ये क्यों नहीं गया, इस तरह से आप तुलना मत करें, ये परिस्थिति जन्य दंगे है मान्यवर। मैं आगे भी कहना चाहता हूं, इसके साथ एक बहुत बड़ी बात दूसरी भी हुई है कि वहां मिलिट्री का शासन आने के बाद थोड़ी ढिलास आ गई है और नार्कोटिक्स का भी बहुत बड़ी तस्करी म्यांमार की ओर से मणिपुर की ओर हुई है, इसके व्यापार से भी बहुत बड़ा अनरेस्ट हुआ है। मगर जो क्लिंचिंग चीट थी वो कोर्ट का जजमेंट थी, उसकी अंतिम तारीख 29 मई थी और इसके विरोध में एक जुलूस निकला। जुलूस में दोनों ग्रुपों के बीच में भिड़ंत हुई और देखते देखते घाटी में और पहाड़ पर दोनों जगह एक दूसरे पर हमले करना, हिंसा करना शुरू हो गया। मान्यवर, अब दो सवाल हैं कि हिंसा शुरू करने के बाद क्या किया, मैं उस पर बाद में जाता हूं। इतनी शांति से बताऊंगा, कोई जरा भी मन में मैं कि कोई किसी चीज से भागना नहीं चाहता, भागना मेरा स्वभाव ही नहीं है, मैं किसी भी चीज से भागना नहीं। मगर मणिपुर की नस्ली हिंसाओं के इतिहास को समझना पड़ेगा। 1993 में श्री पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, राजकुमार दोरेंद्र सिंह कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री थे और नागा कुकी संघर्ष हुआ। नागा कुकी भी नस्ली हिंसा थी और उस वक्त 750 लोग मारे गए, 200 लोग घायल हुए, 45,000 लोग शरणार्थी थे और 1.5 साल तक ये हिंसा अविरत रूप से चलती रही। अब ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोले, भाई 700 लोग मारे गए थे, 200 लोग घायल हुए, 45,000 लोग शरणार्थी बने, आपको मालूम है जवाब किसने दिया? मान्यवर, इनको मालूम है जवाब किसने दिया? एमओएस राजेश पायलट। अरे मुझे नहीं बोलने देते। मान्यवर, इतनी जघन्य घटना हुई, भारत सरकार से किसी ने मुलाकात की क्या था? ट्राइबल मिनिस्टर गए? ना जी। समाज कल्याण विभाग के मंत्री गए? ना जी। होम मिनिस्टर का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। एमओएस गए? ना जी। अरे पूछते हैं हमें कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? अरे भाई, आप जरा देखिए कि नस्ली हिंसाओं का इतिहास मैं पूरा बताता हूं, सब मुझे जल्दबाजी नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, मुझे पूरा बताना है इतिहास। संसद के अंदर विपक्ष बोलते बोलते थक गया, गृहमंत्री जवाब देने के लिए खड़े नहीं हुए, एमओएस ने जवाब दिया मान्यवर, और ये लोग प्रधानमंत्री जवाब दे वो मांग से पूरा पार्लियामेंट होल्ड करे हुए। मान्यवर, 1993 में दूसरी बार संघर्ष हुआ, मतई पंगल संघर्ष हुआ, 100 लोग मारे गए, वो भी 1 साल तक चला और राज्यसभा में गृहमंत्री ने जवाब दिया, बस लोकसभा में। और ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जवाब दे, मुलाकात की किसी ने नहीं की, ना गृहमंत्री ने ना एमओएस ने, किसी ने नहीं की। फिर इंदर कुमार गुजराल आए 97-98 में, कुकी पाइते संघर्ष हुआ, 350 लोग मारे गए, 1 साल तक संघर्ष चला, ये भी नस्ली हिंसा है। मैं टेररिज्म की घटनाएं नहीं गिना रहा, नस्ली हिंसा समझा रहा हूं। 1 साल तक चला, चर्चा ही नहीं हुई, स्टेटमेंट भी नहीं हुआ, सवाल भी सारे खारिज कर दिए गए और ये कहते हैं प्रधानमंत्री जवाब दे। बाद में 2004 में मनमोहन सिंह जी थे, इबोबी सिंह जी थे, लगभग 1700 लोगों के एनकाउंटर हुए, 1700 लोग एक तरफा वर्दी से, ऐसा वहां मानते, मैं नहीं मानता, मैं तो व्यवस्था में विश्वास रखने वाला हूं, वहां लोग मानते वर्दी से की हुई नस्ली हिंसा। 1700 सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान दिया, ढेर सारी एसआईटियां बनी, मगर किसने जवाब दिया? कोई नहीं, एक चर्चा नहीं, ना एमओएस ना मिनिस्टर। अब मुझे बताइए भाई, चिदंबरम साहब थे और वहां राज्यसभा में मेरा हिसाब मांगते थे, मुझे बोलने नहीं देते। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूं, ये परिस्थिति जन्य नस्लीय हिंसा है, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और मान्यवर, 3, 4, 5 मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रखे। मान्यवर, 3 दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया, 16 वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, 36,000 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस सीएपीएफ के वहां पहुंचाए, वायुसेना के विमानों का उपयोग किया, चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया, डीजीपी बदल दिया गया, सूरत से एडवाइजर भेज दिया गया, चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने भेजा, डीजीपी भारत सरकार ने भेजा, सुरक्षा एडवाइजर भारत सरकार, ये सब 4 तारीख की शाम को समाप्त हो गया था। 3 को हिंसा हुई, 4 तारीख को समाप्त हो गया था। और ये कहते हैं 356 क्यों ना लगाया, 356 तब लगती है जब हिंसा के समय राज्य सरकार कोऑपरेट न करे। हमने डीजीपी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के डीजीपी को स्वीकार कर लिया। हमने चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी भेजे हुए चीफ सेक्रेटरी को। मैं यही कह रहा हूं, समझ न हो तो नहीं आएगी भी। सीएम तब बदलना पड़ता है जब कोऑपरेट न करे। ये सीएम कोऑपरेट कर रहा है, डीजीपी सुरक्षा सलाहकार ये सबको हमने बदला है। मैं हिंसा की भी आंकड़े देना चाहता हूं। मैं क्यों कह रहा हूं कि आप राजनीति कर रहे हो, मैं लॉजिक के साथ कह रहा हूं। माननीय, अब तक 152 लोग मारे गए, इसमें कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। ये सोशल मीडिया के जमाने में छिप भी नहीं सकता है और हमारा स्वभाव भी छिपाने का नहीं है। माननीय, 152 लोग मारे गए, इसकी एनालिसिस क्या है? मई में 107 मारे गए, मई महीने, आज हम अगस्त में, जून में 30 मारे गए, जुलाई में 15 मारे गए और अगस्त में अब तक 4 मारे गए। माननीय, मई में जो 107 मारे गए उसमें से 68 लोग 3, 4 और 5 में पहले 3 दिन में ही मारे गए। मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूं माननीय कि हिंसा धीरे धीरे कम हो रही है, हम हिंसा में की आग में तेल डालने का काम न करें। हम तेल न डालें। तेल कैसे डाला जाता है मैं बताता हूं। श्री राहुल गांधी जी यहां से वहां मुलाकात करने, मैं बड़ा स्वागत करता हूं, संवेदना है, मणिपुर की चिंता है, गए एयरपोर्ट पर उतरे। उन्होंने कहा कि भाई हमें चूड़ाचांदपुर जाना है, ठीक है भाई, अगले दिन जाने वाले थे, पहले दिन का कोई बात नहीं, चाहिए आप जरूर जाना चाहिए। हमने कहा हेलीकॉप्टर से चले जाइए, कि नहीं मैं रोड से जाऊंगा, पुलिस ने रोकना पड़ा। फिर 3 घंटे तक ऑल इंडिया लाइव कराकर ये नाटक देश को दिखाया।
राहुल गांधी ने अपनी बात कही और उसके बाद तुरंत सदन छोड़कर चले गए। उन्होंने अपने भाषण के बाद स्मृति ईरानी के पलटवार को नहीं सुना, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के कई सांसदों को स्मृति ईरानी का भाषण सुनना पड़ा। राहुल गांधी ने जहां अपना भाषण खत्म किया था, स्मृति ईरानी ने वहीं से अपने भाषण की शुरुआत की। स्मृति ईरानी ने भारत माता की हत्या जैसे शब्दों के इस्तेमाल को देश के अपमान से जोड़ा। स्मृति ईरानी ने तो इन शब्दों के इस्तेमाल के बाद विपक्षी सांसदों की तालियों को भी निशाने पर लिया।
पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूँ, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मैं इनसे पूछती हूँ, इन्हीं के अलायंस के सदस्य बैठे हैं जिन्होंने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात की, अगर हिम्मत है गांधी खानदान में तो इस सदन में और इस देश को बताएं कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन करप्शन इन इंडिया, यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन इनकॉम्पिटेंस, यू आर नॉट इंडिया।
मणिपुर हिंसा में पीड़ित महिलाओं का दर्द बताने वाले राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने आतंकवाद से पीड़ित कश्मीरी पंडित महिलाओं की याद दिलाई। यही नहीं, उन्होंने हाल ही में कांग्रेस शासित राजस्थान में नाबालिग लड़की के रेप और मर्डर के मामले में भी राहुल गांधी को घेरा।
ये बात करते हैं इंसाफ की, ये चेहरा धूमिल है, ये चेहरा धूमिल है। मैं बताऊं किसका चेहरा है, मैं बताऊं किसका चेहरा है अध्यक्ष महोदय, ये चेहरा है गिरिजा टिक्कू का। सुन लीजिए पंडितों की दास्तान आप भी, गिरिजा टिक्कू का यह चित्र है। 90 के दशक में एक महिला यूनिवर्सिटी में अपना पेचेक लेने जाती है, सारी बातें करूं, अपना पेचेक लेने जाती है, बस से घर लौटने का प्रयास करती है, उसको 5 मर्द बस से खींच कर टैक्सी में ले जाते हैं, बलात्कार करते हैं और फिर आरी से उसका बदन काट देते हैं। जब गिरिजा टिक्कू के जीवन पर एक फिल्म में एक प्रति आया, मैं आज कहना चाहती हूं कि कांग्रेस के कुछ प्रवक्ताओं ने उसको प्रोपेगेंडा कहा। सरला भट्ट, आप नहीं चाहते कश्मीरी पंडितों की दास्तान कहीं सुनाई जाए, आप नहीं चाहते वो आइडेंटिफाई हो एज विक्टिम। सरला भट्ट मेडिकल स्टाफ थी, 90 के दशक में उसको उसके इंस्टीट्यूट से अगवा करके गैंग रेप किया गया और सड़क के किनारे रखा गया। आज मैं पूछना चाहती हूं कि एक तरफ इनकी अलायंस के लोग हिंदुस्तान को विभाजित करने की बात करते हैं, ये आज अपने आप को इंसाफ के पुजारी बताते हैं, लेकिन मुझे बताइए गिरिजा टिक्कू सरला भट्ट को कब इंसाफ मिलेगा। हर गली हर मोहल्ले में एक स्लोगन गूंजता था पंडितों के बीच, रलीव सलीव गली। पुनः कहती हूँ, रलीव सलीव गलीव। आप चिल्लाना बंद करें, समझे पहले, रलीव सलीव गलीव। या तो अपना धर्म बदलो, या कश्मीर छोड़ो, या यहीं मरो। उनकी आवाज भारत की आवाज नहीं है, उनकी आवाज को आपने कभी नहीं सुना। मैं आज कहती हूं, इन्होंने कहा अश्रुब है, भ्रमण किया 84 के दौरान में, मुझ जैसे कई लोग देश की राजधानी में थे और किसी का वक्तव्य ना सुने अध्यक्ष जी। एक पत्रकार है प्रणय गुप्ता, उन्होंने लिखा कि सिख बच्चों को कैस्केड करके उनके अंगों को उनकी मां के मुंह में थूका गया। आज बोलती हूं त्रिलोकपुरी में 30 औरतों को इकट्ठा करके चीला गांव में ले जाकर उनका बलात्कार किया। सुल्तानपुरी में एक महिला ने एफिडेविट दी है, मेरे हस्बैंड को मार दिया, बेटी को शादी से एक रात पहले उठाकर ले गए और उसका बलात्कार किया। एक 45 साल की मां ने कहा सिख दंगों के दौरान कि ना सिर्फ मेरे पति को मारा, ना सिर्फ मुझे गैंगरेप किया, बल्कि मेरे सामने मेरे बेटे पर केरोसिन छिड़क कर उसको आग लगा दी गई। और आज भारत की बात करते हैं।
राहुल गांधी ने अपने भाषण में देश में केरोसिन छिड़के जाने की बात कही थी। वो मणिपुर में दो समुदायों के बीच चल रही हिंसा को मणिपुर ही नहीं, देश में दो समुदायों के बीच हो रही हिंसा की दूसरी घटनाओं से भी जोड़ रहे थे। इसके जवाब में स्मृति ईरानी ने राहुल की उन विदेश यात्राओं का जिक्र किया जिसमें उन्होंने अलग अलग मंचों से भारत में केरोसिन छिड़के जाने की बात कही थी।
राहुल गांधी ने कहा There is going to be a mass upsurge. Now the question is, how can the opposition effectively use the upsurge to change politics. मतलब उन्होंने कहा कि देश में उथल पुथल होगी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ विपक्ष इस उथल पुथल को कैसे इस्तेमाल कर सकता है ये मैं सोच रहा हूँ। फिर उनका शब्द है, देश में केरोसिन फैला है, हमें एक चिंगारी की जरूरत है। आज पूछना चाहती हूँ, माचिस ढूंढते ढूंढते राहुल गांधी कहाँ कहाँ गए? अमेरिका गए? तंजीम अंसारी के साथ, जो पाकिस्तानी इमाम जावद अहमद के साथ ताल्लुक रखते हैं, अमेरिका में अपने कार्यक्रमों को उनके साथ करवाया। राहुल गांधी, मिन्हाज खान, जो हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, उनके साथ उन्होंने मीटिंग की। आज जो लोग इस देश में एस्पियोनाज के लिए पकड़े जाते हैं, उनका राहुल गांधी ने जाकर विदेश में समर्थन किया।
आज राहुल गांधी ने एक गंभीर विषय पर अपनी बात रखी थी। विपक्षी नेता के तौर पर राहुल गांधी से ये उम्मीद की जाती है कि वो गंभीर विषयों पर गंभीरता से अपनी बात को रखेंगे। इसके अलावा वो सरकार पर इतना दबाव तो बना ही लेंगे कि वो उनके सवालों का जवाब देने को मजबूर हो जाएं। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि राहुल गांधी गंभीर विषयों पर बोलते बोलते बीच में कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे उनकी सारी गंभीरता मजाक बनकर रह जाती है। आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर राहुल गांधी ने भाषण तो जोरदार दिया, लेकिन भाषण खत्म करने के बाद उन पर सदन में मौजूद महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगा। दरअसल राहुल गांधी पर फ्लाइंग किस करने का आरोप लगा। स्मृति ईरानी ने अपने भाषण में राहुल गांधी के एक्शन को असंसदीय बताते हुए महिलाओं का अपमान बता दिया।
एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूँ अध्यक्ष से, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन हु कैन गिव अ फ्लाइंग किस टू अ पार्लियामेंट विद सिक्स फीमेल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण है या सदन में देश को पता चले, लेकिन कहां गए हैं, वहां पर क्या हालात हैं? अध्यक्ष महोदय, गोद भराई के नाम पर राजस्थान में भास्कर ने लिखा है कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार जेब भराई कर रही है, 13 से 20 महीने का घरबाशे दिखाया जा रहा है राजस्थान में और भारत की तिजोरी से पैसा लूटा जा रहा है। इनका सरोकार महिला उत्थान से नहीं, ये महिला के बारे में क्या सोचते हैं, इनकी क्या हरकतें हैं, इनके नेता ने जाते जाते यहां पर उसको प्रसारित कर दिया है।
फ्लाइंग किस के जो आरोप राहुल गांधी पर लगे हैं उससे जुड़ी तस्वीरें तो नहीं आई हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो यहाँ एक बात हम आपको जरूर बताना चाहेंगे कि अक्सर राहुल गांधी कुछ अनोखा जरूर करते आए हैं। हम आपको राहुल गांधी की दो तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें वर्ष 2018 की हैं। इसमें एक तस्वीर भाषण देते देते अचानक ही अपनी सीट से उठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाने की भी है, जबकि दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी आंख मारते हुए दिखाई दिए। ये उन्होंने कब किया था? जब वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से गले मिलकर वापस अपनी सीट पर आए थे। सीट पर बैठते ही उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ देखते हुए आंख मारी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 2018 में राहुल गांधी ने ये हरकतें अविश्वास प्रस्ताव पर अपने भाषण के बाद ही की थी। अब उन पर आरोप ये है कि आज एक बार फिर उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान ही अपने भाषण के बाद फ्लाइंग किस किया है। इस मामले को लेकर सदन में मौजूद बीजेपी की महिला सांसदों ने शिकायत भी दर्ज करवाई है। हमने आपसे कहा था कि इस बार जनता का किस्सा जनता का हिस्सा बोलेगा, इसीलिए संसद में राहुल गांधी के फ्लाइंग किस के आरोपों पर आपने सियासी संग्राम तो देख लिया, लेकिन इस पर आम जनता का क्या कहना है आपको ये भी जरूर सुनना चाहिए।
इफ ही इज नॉट सीरियस अबाउट द रूल्स जो मतलब फॉलो करने चाहिए, तो कोई दूसरी कंट्री का जो लीडर रहेगा वो उनको सीरियसली क्यों लेगा?
क्या वो एक जेस्टर दिखा रहे, अपना एक प्यार दिखा रहे? उन्होंने ऐसा बोला नफरत की बाजार छोड़ना है, मोहब्बत का शरबत, वो फ्लाइंग किस दे रहे, मार थोड़ी रहे।
जैसे कि आम आदमी के ऊपर भी कार्रवाई होती है ना, अगर छोटा मोटा उसने किधर गुना किया तो कार्रवाई होती है। सब हम भारतीय संविधान के सब ये है ना, नागरिक है ना,
उन्हीं को हम ही लोग फॉलो करते हैं। और अगर वो ये सब काम करेंगे तो अगर वो हमारे नीचे वाले क्या फॉलो करेंगे? तो मंदिर और संसद ये सब जैसे भी जो स्थान है उसमें ये सब चीजें शोभा नहीं देती।
भारत जोड़ा यात्रा निकाली और कर्नाटका में उन्होंने इतनी अच्छी जीत प्राप्त की, और उसके बाद भी ऐसी छोटी छोटी गलती है, ये कांग्रेस को शोभा नहीं देती।
ये सब व्यवहार मेरे को रखता है कोई मायने रखता नहीं है। देश में और भी जरूरी मुद्दे हैं जिन पे बात होनी चाहिए।
वो संसद भवन है उसमें ये ऐसी घटनाएं अच्छा नहीं, शोभा नहीं देती है ना।
ठीक है, आप उसको एक डिफेंड कर सकते हैं कि हाँ मैंने कोई गलत इंटेंशन से नहीं किया, मगर ये तरीका सही नहीं था।
कि अगर राहुल गांधी की फैमिली की तरह लेडीज की तरफ कोई ऐसे करता तो उसका क्या रिएक्शन होगा?
पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए, तो मेरे ख्याल से तो ये ठीक नहीं।
राहुल गांधी वन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, बट अगर ये सब हरकत एक प्राइम मिनिस्टर करता है तो हम लोगों का इंडिया का इमेज भी बहुत खराब होता है, जो एकदम ही उचित नहीं है।
आचरण होना चाहिए कि हम जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे हमने आपको कितना रिजर्व दिखाना है, कितने अच्छे से वहाँ पे रहना है, तो ये मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए।
भारतीय संस्कृति में कहीं पर भी ये नहीं है कि हम फ्लाइंग किस करें। नमस्कार, राम राम जी है, ठीक है। अगर हम सनातनी है तो हम राम राम कहेंगे, नहीं सनातनी है तो दूसरे धर्म से है तो भी उसको, हमारी भारतीय सभ्यता में कहीं भी फ्लाइंग किस नहीं है, किसी भी धर्म में नहीं है।
अब हम रूस के मिशन मून का डीएनए टेस्ट करेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे चांद पर जाने की रेस लगी हुई है। भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 की कामयाब लॉन्चिंग की थी। हमारा चंद्रयान 3 अब चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहा है, लेकिन अब रूस भी इस रेस में शामिल होने वाला है। रूस करीब 47 वर्ष बाद चांद पर जा रहा है। रूस ने अपने इस मिशन मून को नाम दिया है लूना 2-5। ये मिशन 11 अगस्त को लॉन्च होगा। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस के मुताबिक लूना 2-5 की लॉन्चिंग रूस के वोस्टोंच कॉस्मोड्रोम से होगी, जो मॉस्को से 5,550 किलोमीटर की दूरी पर है। रूस ने अपने इस मिशन में सोयूज 2.1B फ्रेगेट रॉकेट का इस्तेमाल किया है, जो चंद्रयान 3 से कई गुना ताकतवर है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भारत ने तो चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को ही लॉन्च कर दिया था, तो फिर रूस का लूना 2-5 कैसे भारत के चंद्रयान 3 से पहले ही चांद पर लैंड कर जाएगा? अब इसके बारे में मैं आपको सरल शब्दों में बताता हूं। रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस के पास शक्तिशाली रॉकेट है। ये रॉकेट इतने पावरफुल हैं कि वो सीधे लूना 2-5 को सीधे चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लूना 2-5 को पृथ्वी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लूना 2-5 अपने शक्तिशाली रॉकेट और पावरफुल इंजन की वजह से 5 दिन में चांद की कक्षा में पहुंच जाएगा। इसके बाद 5 से 7 दिन तक चांद के चारों तरफ चक्कर लगाएगा और उसके बाद चांद पर लैंड करेगा। भारत का चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, लेकिन रूस का लूना 2-5 भी इसी तारीख के आसपास चांद के साउथ पोल के करीब लैंड करेगा। ऐसा नहीं है कि इसरो सीधे अपने यान को चंद्रमा तक नहीं भेज सकता, लेकिन नासा की तुलना में इसरो के प्रोजेक्ट किफायती होते हैं। इसरो के पास नासा की तरह बड़े और ताकतवर रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान को सीधे चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा सके। ऐसे रॉकेट बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए लगेंगे, इसीलिए हमारा चंद्रयान 3 धीरे धीरे अपने मिशन की तरफ बढ़ रहा है। ये कैसे हो रहा है ये भी आपको समझना चाहिए। चंद्रयान तीन पृथ्वी के चक्कर लगाता हुआ आगे बढ़ा है। चंद्रयान तीन ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का भी इस्तेमाल किया है। लॉन्च होने के बाद चंद्रयान तीन ने सबसे पहले पृथ्वी के छोटे चक्कर लगाए, फिर हर चक्कर के साथ इसकी दूरी बढ़ी है। पांचवें चक्कर में प्रोपल्शन मॉड्यूल की मदद से चंद्रयान तीन चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा है। यहां फिर से वो चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है। अब ये चक्कर बड़े से छोटे हो रहे हैं। यहां से चंद्रयान तीन लैंडर अपने अगले कदम यानी चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की तरफ बढ़ रहा है। रूस के पास शक्तिशाली रॉकेट होने से उसे चांद पर पहुंचने में कम समय लगेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भारत का चंद्रयान तीन किसी भी मामले में कम है। चंद्रयान दो की असफलता के बाद भारत एक एक कदम बहुत संभल कर रख रहा है और पूरा भारत अब 23 अगस्त का इंतजार कर रहा है, जब चंद्रयान तीन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रचेगा। इसरो ने आज दूसरी बार चंद्रयान तीन की ऑर्बिट घटाई है, जो भारत के लिए गुड न्यूज है, यानी हम सफलता की तरफ एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव हमेशा से ही विशेष रुचि का विषय रहा है। ये ऐसी जगह है जहां कुछ हिस्सों में हमेशा छाया रहती है जबकि कुछ में अंधेरा रहता है। छाया वाले इलाके को लेकर कहा जाता है कि यहां पर बर्फ हो सकती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का दावा है कि अरबों सालों से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के कुछ गड्ढों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। ऐसे में आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि रूस का लूना 25 और भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरकर क्या करेगा। दरअसल चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सिर्फ 2 हफ्ते काम करेगा, जबकि लूना 25 साल भर काम करेगा। रूस का लूना 25 चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन की खोज करेगा, साथ ही लूना 25 चंद्रमा की आंतरिक संरचना पर भी रिसर्च करेगा। लूना में एक खास यंत्र लगा है जो सतह की 6 इंच खुदाई करके पत्थर और मिट्टी का सैंपल जमा करेगा ताकि जमे हुए पानी की खोज की जा सके। भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह की तस्वीरें भेजेगा, वहां के वातावरण, खनिज, मिट्टी से जुड़ी तमाम जानकारियों को जुटाएगा। इसका एक लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना भी है। भारत का चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25 चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने की कोशिश करेंगे। अंदाजा है कि दोनों की लैंडिंग भी एक ही दिन होगी। जो भी पहले उतरने में कामयाब होगा वो देश चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। चंद्रमा का साउथ पोल इस लिहाज से अहम है क्योंकि यहां बड़ी मात्रा में पानी होने की संभावना है। इस पानी से भविष्य में ऑक्सीजन भी बनाई जा सकती है। इसीलिए चंद्रमा पर इंसानों की बस्ती के लिए दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल बेहद अहम है। चंद्रमा पर कदम रखने को लेकर जिस तरह से अलग अलग देशों में होड़ लगी है उसे देखकर अब ये लगने लगा है कि धरती में चंद्रमा के हाईवे पर ट्रैफिक बढ़ने वाला है। 23 अगस्त को भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरेगा। लगभग इसी समय रूस का लूना 25 भी चंद्रमा की सतह को छुएगा। कुछ घंटे बाद यानी 26 अगस्त को जापान का मिशन स्लिम चंद्रमा के लिए अपनी उड़ान भरेगा। ऐसा करीब 50 वर्षों बाद होगा जब 3 अलग अलग देश चांद की सतह पर दस्तक देंगे। ये सिर्फ एक शुरुआत है। वर्ष 2023 में ही 2 और वर्ष 2025 तक 5 नए चंद्रमा मिशन लॉन्च होंगे। इसके अलावा कम से कम 2 मैन्ड मिशन होंगे, यानी इस मिशन में चांद पर इंसान भी कदम रखेगा और ये 2 मैन्ड मिशन अमेरिका और चीन लॉन्च करेंगे। वर्ष 1969 से 1972 तक सिर्फ 3 सालों में 12 इंसान चंद्रमा की सतह तक पहुंचे थे। चंद्रमा पर इंसान ने आखिरी बार कदम वर्ष 1972 में रखा था। पिछले 50 वर्षों से किसी भी देश ने चंद्रमा पर मैन्ड मिशन लॉन्च नहीं किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1960 के दशक में 55 चंद्रमा मिशन लॉन्च किए गए थे, जबकि 1980 के दशक में किसी भी देश ने चंद्रमा मिशन लॉन्च नहीं किया था। रूस का आखिरी चंद्रमा मिशन लूना 24 1976 में लॉन्च हुआ था, यानी करीब 47 वर्ष बाद अब रशिया अपने मिशन को फिर से लॉन्च कर रहा है। ये आंकड़े इस बात का सबूत है कि करीब 50 वर्ष बाद चंद्रमा की दौड़ फिर से तेज हो गई है। हालांकि उस समय और आज के चंद्र मिशन का लक्ष्य एकदम अलग है। 1960 के दशक के चंद्रमा मिशन कोल्ड वॉर के समय लॉन्च हुए थे। उस समय की दोनों बड़ी शक्तियां अमेरिका और सोवियत यूनियन में एक होड़ लगी थी कि कौन चंद्रमा पर पहले पहुंचेगा। 1960 के चंद्रमा मिशन का एकमात्र लक्ष्य सिर्फ चांद पर कदम रखने का होता था, लेकिन आज के समय के चंद्रमा मिशन का लक्ष्य बदल गया है। अब चांद पर पानी खोजना, वहां के वातावरण पर रिसर्च करना, मनुष्य की बस्तियां बसाना मुख्य लक्ष्य है। वर्ष 1960 के दौर में सिर्फ रशिया और अमेरिका ही अपने मिशन को लॉन्च करते थे, लेकिन समय के साथ इस रेस में कई और देश भी शामिल हुए हैं। भारत, चीन, जापान, साउथ कोरिया, इजराइल, यूरोप के देश और सऊदी अरेबिया जैसे देश भी अपने मून मिशन को लॉन्च कर रहे हैं। चंद्रयान 3 और रूस का लूना 2-5 करीब करीब एक ही दिन चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने की कोशिश करेंगे। जो इसमें पहले सफल होगा वो ये चमत्कार करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा।
लूना 25 चंद्रयान 3 के बाद लॉन्च होने जा रहा है, लेकिन फिर भी ये उसी के चंद्रमा पर उतरने के समय के आसपास की वहां उतरेगा। इसकी क्या वजह है? तो मेन चीज ये है कि जो जिस रॉकेट से लूना 25 का प्रक्षेपण होना है वो बहुत शक्तिशाली रॉकेट है। वो एक बार जो है पृथ्वी की जद से निकलने के बाद करीब 4 से 5 दिन में लूना 25 को चंद्रमा तक ले जाएगा। ये बात सही है कि लूना 25 भी चंद्रमा के इर्द गिर्द करीब 100 किलोमीटर की कक्षा में जाएगा और उसके बाद उचित समय पर उसको चंद्रमा की सतह पर उतरना है। 23 अगस्त का दिन खास इसलिए है कि उतरने की जगह पर सूर्योदय हो के जो है सूर्य आसमान में करीब 8-9 डिग्री की ऊंचाई तक पहुंचा होगा, जिसका मतलब है कि उतरने के समय आपकी जो सोलर पैनल्स हैं वो तुरंत काम करेंगी। ये बात चंद्रयान 3 पर लागू है, यही बात लूना 25 पर भी लागू है।
डीएनए में हम फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि इस ब्रेक के बाद हम आपको इनकम टैक्स रिफंड के नाम पर चल रहे साइबर फ्रॉड के बारे में बताएंगे।
मेरे खेत का यही बचा है और कुछ बचा नहीं है। मैंने उससे जो मैं नॉर्मली सवाल पूछता था, भैया आपको बीमा का पैसा मिला, वो पूछा बीमा का पैसा मिला वो पूछा और पिछली बार जब मैं बोला तो शायद मैंने आपको थोड़ा कष्ट भी पहुंचाया, क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अडानी जी पे फोकस किया कि जो आपके सीनियर नेता हैं शायद उनको थोड़ा कष्ट हुआ। तो वो जो उनको कष्ट हुआ
छोड़िए, हमेशा अडानी पे अभी भी कष्ट हो रहा है।
वो जो कष्ट हुआ
अभी भी कष्ट हो रहा है।
विषय पे आइए, विषय पे।
अभी भी कष्ट हो रहा है, अभी भी कष्ट हो रहा है। ये देखे, ये सारे, ये
नहीं बैठे, मगर सुनिए, तो वो जो कष्ट हुआ
1, 2, 3, 4, 5
उसका असर शायद आप पे भी थोड़ा हुआ, तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मगर मैंने सिर्फ सच्चाई रखी थी, मगर आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं
है। डरो मत, डरो मत।
आज जो मेरा भाषण है,
डरो मत।
और आप
डरो मत, डरो मत, डरो मत। डरो मत।
कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है वो अदानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं।
आप छोड़िए,
तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं, क्योंकि मेरा भाषण आज दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। रूमी ने कहा था जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। और मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा, मतलब एक दो गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। तो आप रिलैक्स कर सकते हैं।
डरिए मत। अरे रक्षा मंत्री जी आज संभाल लेंगे हम लोग।
पिछले साल 130 दिन के लिए मैं भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक गया, अकेला नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ।
खैर ये हमारा टाइम खत्म करने का साजे से
समुद्र अधीर समुद्र के तट से
माननीय सदस्य प्लीज ऐसे धमकाने का बात मत बोलो। यहाँ पे
आप ही बोलिए,
प्लीज।
मैं समुद्र के तट से कश्मीर की बर्फीली पहाड़ी तक चला, नहीं लद्दाख को मैंने नहीं छोड़ा। यात्रा अभी खत्म।
अब हम देश की तरक्की में योगदान दे रहे मेरे और आपके जैसे टैक्स पेयर के साथ हो रही धोखाधड़ी का एक विश्लेषण करेंगे। भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों की बाढ़ सी आ गई है, कभी मेल भेजकर, कभी ओटीपी के नाम पर और कभी लिंक्स भेजकर साइबर ठग लोगों को ठग रहे हैं। भारत में इस बार 6 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल हुए हैं। इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, हालांकि अब भी फाइन के साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्स पेयर को रिफंड मिलना भी शुरू हो गया है। कुछ लोगों का रिफंड आ गया है, कुछ का आना अभी बाकी है। टैक्स पेयर बेसब्री से पैसे का इंतजार कर रहे हैं। इसी बात का फायदा अब साइबर ठग उठा रहे हैं। साइबर ठग कैसे टैक्स पेयर को ठग रहे हैं और कैसे आप इससे बच सकते हैं, इसको लेकर हम आपको सबूत के साथ हर बात बताएंगे। इसीलिए विश्लेषण को आखिर तक जरूर देखिए। अब मैं आपको कुछ मैसेज और ईमेल के स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। ये मैसेज साइबर ठगों ने टैक्स पेयर्स को भेजे हैं। हो सकता है इसी तरह का मैसेज या ईमेल आपके पास आया हो। इन मैसेजेस या ईमेल को देखकर किसी के लिए भी बताना मुश्किल है कि ये असली है या नकली। अब इस मैसेज को ध्यान से देखिए। साइबर ठग की तरफ से ये मेल एक टैक्स पेयर को भेजा गया है जिसमें ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखा है। इसमें नेशनल सिंबल अशोक स्तंभ का लोगो भी दिख रहा है। ईमेल में लिखा है कि आपका 42,320 रुपए का रिफंड है, लेकिन आपकी तरफ से दी गई जानकारी इनकरेक्ट है। इसी के नीचे लिखा है क्लिक हियर टू सबमिट अ रिफंड रिक्वेस्ट। इसे क्लिक करते ही साइबर ठगों का खेल शुरू हो जाएगा और बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। अब आपको एक और टैक्स पेयर के मोबाइल पर आया एक मैसेज दिखाता हूं जिसमें लिखा है आपका 15,490 रुपए का इनकम टैक्स रिफंड स्वीकृत किया गया है, राशि जल्द ही खाते में जमा कर दी जाएगी। इसमें बैंक अकाउंट की डिटेल है। इसके बाद लिखा है अगर ये डिटेल सही नहीं है तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर अपने बैंक खाते की जानकारी अपडेट करें। इसके बाद साइबर ठग ने एक लिंक भेजा है, अगर इस लिंक पर क्लिक किया गया तो जिंदगी भर की कमाई उड़ जाएगी और आप हाथ मलते रह जाएंगे। मैंने अभी आपको सिर्फ दो मैसेज दिखाए हैं। देश में लोगों के मोबाइल और ईमेल पर ऐसे ही ना जाने कितने इनकम टैक्स रिफंड के मैसेज आ रहे हैं। हो सकता है आपको भी आया हो, अगर आया है तो आप सावधान हो जाइए। हमारे संवाददाता वरुण भसीन के पास भी ITR के ऐसे कई फर्जी मैसेज आए हैं। ये उसी का स्क्रीनशॉट है। ये मैसेजेस साइबर ठगों ने भेजे हैं। मामला आपसे जुड़ा है, आपकी जिंदगी भर की कमाई से जुड़ा है, इसीलिए जी मीडिया रिपोर्टर वरुण भसीन की सावधान करती ये रिपोर्ट आपको आज जरूर देखनी चाहिए।
कि इस तरह के जो कुछ मैसेजेस हैं वो फ्लोट हो रहे हैं व्हाट्सएप पे। सबसे पहले मैं मैसेज दिखा रहा हूं जो यहां पर आया है। इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि डियर टैक्स पेयर, योर इनकम टैक्स रिफंड ऑफ 24,000 हैज बीन अप्रूव्ड एंड योर बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड शॉर्टली, बट डू काइंडली वेरीफाई योर अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर छुपा दिया गया है, यानी कि वो कोशिश कर रहा है कि आप अपना नया अकाउंट नंबर इस लिंक पर क्लिक करके वहां अपडेट कर दें और यहीं से वो शुरू होता है आपको लूटने का तरीका। ये व्हाट्सएप का मैसेज है। मैं आपको और मैसेज दिखाता हूं इस वक्त कि किस तरह की, अगर आप आगे जाएंगे उस वेबसाइट पर तो कुछ ऐसी एकदम ई फाइलिंग नाम से आपको यहां पर नजर आ जाएगा और उसमें भी साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आवर सिस्टम इंडिकेट्स दैट यू आर क्वालिफाइड फॉर एन इनकम टैक्स रिफंड ऑफ 59,000। साफ तौर पर वो आपका नाम भी जानते हैं क्योंकि आपका डेटा इस तरह से बाजार में बिक चुका है कि वो आपका नाम जानते हैं और आपको मैसेज करते हैं। और इस पोर्टल से मैसेज आता है जिसमें BZITRDFL लिखा हुआ नजर आ रहा है, यानी कि वो पोर्टल भी बिक चुके हैं। वो साफ तौर पे जो मैसेज आपको लगेगा यार वाकई में ये तो BZ करके ITRDFL लिखा हुआ है और तो सच में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से होगा, और उसमें आपको फिर लिंक दे दिया जाता है कि आप इस लिंक पे दबाइए और अपना रिफंड ले लीजिए, यहां पर आपका रिफंड इतने रुपए का बना है। तो आप सोचते हैं कि शायद मुझे इस लिंक पर क्लिक करने के बाद ही वो रिफंड आएगा, तो आपको हम जानकारी दे दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी मैसेज, ऐसा कोई भी व्हाट्सएप पे तो कभी भी नहीं आएगा। आपको सिर्फ जानकारी दी जाएगी अगर वाकई में दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं आएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से टेक्स्ट मैसेज या फिर मेल जिसमें यह कहा गया हो कि आपको अगर रिफंड लेना है तो आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए। अगर आप वेबसाइट्स देखें तो वो एकदम असली जैसी दिखने वाली वेबसाइट्स होती हैं, लेकिन gov.in IncomeTaxDepartment.gov.in जो इस वक्त होती है उसी पर डैंड, यानी कि .gov पे आपको हमेशा नजर रखनी है खासतौर पे, क्योंकि बहुत सी ऐसी सेम नाम वाली वेबसाइट्स आती हैं और आपका पैसा आपसे लूटने की लगातार कोशिश करती हैं। लेकिन कोई भी लिंक पर रिफंड की बात हो या फिर आपका कुछ अटक गया है ITR भरते हुए, उसका कोई भी बात करते हुए लिंक आपके पास आता है तो उस पर इस वक्त भरोसा ना करें, क्योंकि बहुत से लोग इस वक्त उन साइबर फ्रॉड्स जो हैं, ये देखिए जो साइबर क्रिमिनल्स लगातार इस चीज पे लगे हुए हैं, उनके चक्कर में फंस रहे हैं और अपना अकाउंट खाली करवा रहे हैं, शून्य हो रहा है उनका अकाउंट। वरुण भसीन, जी मीडिया।
साइबर ठगों की तरफ से मैसेजेस या मेल पर भेजे जा रहे लिंक्स असल में ऐसा जाल है जिसमें लोगों को फंसाकर पैसे लूटने का खेल चल रहा है। ये खबर दिखाने के पीछे हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि सावधान करना है। साइबर ठग किस किस तरह से लोगों को ठग रहे हैं इससे आपको अलर्ट करना है। इस वक्त रिफंड के जाल में उलझाकर साइबर ठग लोगों को ठग रहे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद अगर आप भी अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका अकाउंट खाली करा सकती है और साइबर ठग को मालामाल बना सकती है। एक नहीं, ऐसे सैकड़ों मैसेज हैं जिनमें इनकम टैक्स रिफंड करने की बात कही गई है। आजकल इसी तरह के मैसेज लोगों को भेजे जा रहे हैं, किसी को मेल पर तो किसी को व्हाट्सएप पर। हर मैसेज में किसी को 5,000, किसी को 10,000, किसी को 40,000 के रिफंड की बात कही गई है। साइबर ठग मैसेज के साथ एक लिंक भी शेयर कर रहे हैं, जिस पर जाकर जरूरी जानकारी अपडेट करने के लिए कहा जाता है। और जैसे ही कोई इस लिंक पर क्लिक करता है, साइबर ठगों का खेल शुरू हो जाता है।
31 जुलाई लास्ट डेट होती है इनकम टैक्स रिटर्न भरने की। उसके बाद से फर्स्ट से ही मेरे पास मैसेजेस आने लग गए कि आपको अगर रिफंड चाहिए आपके आईटी जो आपने रिटर्न भरी है उसके अगेंस्ट, तो आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए और आपका रिफंड जल्दी से जल्दी हम वो कर देंगे। बट द थिंग इज कि जैसे ही मैंने उस लिंक पर क्लिक किया, मेरे को लगा कि वो मेरी बहुत सारी डिटेल्स मांग रहा है जो मैं ऑलरेडी आईटी रिटर्न में भर चुकी हूँ। मेरे बैंक अकाउंट नंबर, मेरी डिटेल्स, मेरा नाम, मेरा बैंक कहाँ पर है और ये सब। तो मुझे शक हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी रिफंड लेने के लिए आप जो चीजें हैं वो ऑलरेडी आप अपने आईटी रिटर्न में भर देते हैं।
टैक्स देने वाला अपने रिफंड के इंतजार में है और साइबर ठग आपकी एक गलती का इंतजार कर रहे हैं। नाम, पता, बैंक अकाउंट, हर जानकारी इन ठगों के पास है।
मैसेजेस आ रहे हैं विदाउट फेल, आई एम ऑल्सो रिसीविंग, और बाकी जो फ्रेंड्स हैं हमारे उनको भी आते हैं, ग्रुप में लोग एक्सचेंज करके बताते हैं कि मैसेज आ रहे हैं। एक टेम्पटेशन दिया जाता है, मेनली जो मैसेज आप पूछ रहे क्या आता है उसमें एक टेम्पटेशन दिया जाता है कि आदमी को पैसा मिल रहा है, एंड दैट इज हाउ द पर्सन गेट्स टेम्प्टेड। तो उसी प्रकार के मैसेज आ रहे हैं।
एक आम आदमी को टैक्स को लेकर कई जानकारियां पता नहीं होती, उसका ध्यान सिर्फ इस बात पर रहता है कि उसने इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पर फाइल कर दिया है और उसका रिफंड कब और कितना आएगा। अगर आपके पास भी टैक्स रिफंड का मैसेज या मेल आया है तो कुछ बातों का जरूर ध्यान रखिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर्स को इस तरह का कोई मैसेज नहीं भेजता है। इनकम टैक्स रिफंड सीधे उसी बैंक अकाउंट में भेजा जाता है जिसे आईटीआर भरते समय दिया था। साथ ही इसकी सूचना रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर पर मैसेज के जरिए दी जाती है। रिफंड को लेकर इनकम टैक्स विभाग किसी भी टैक्स पेयर को मैसेज नहीं भेजता।
आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा इनकम टैक्स का कोई रिफंड सबसे पहले ड्यू है या नहीं, पहली चीज ये है। और नहीं है आपको आ रहा है तो वहीं पे आपको एक जो है सिग्नल आना चाहिए, अलर्ट आना चाहिए कि भाई ये क्यों आ रहा है मेरे पास। सेकंडली चेक कीजिए, ऐसा तो है नहीं कि 5 मिनट में रिफंड अगर मिलना तो नहीं मिलेगा। यू क्रॉस चेक विद अदर्स जो एक्सपर्ट है, किसी सीए से, नोन दोस्त से आप मालूम कीजिए, उसके बाद कीजिए। HTTPS जिसमें नहीं है उस लिंक पे क्लिक नहीं करना है। ये जनरली लोगों को बताया जाता है, फिर भी लोग दुर्भाग्य से लालच में या अज्ञानवश इसमें फंस जाते हैं।
इसी तरह का एक वायरल मैसेज सरकार के ऑफिशियल फैक्ट चेकर PIB फैक्ट चेक ने शेयर किया है। PIB फैक्ट चेक के इस मैसेज को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी शेयर किया है। हजारों किलोमीटर दूर बैठकर साइबर ठग लोगों को ठगने के नए नए तरीके निकाल रहे हैं, इसीलिए फ्रॉड से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। किसी भी अनजान नंबर से आए मेल या मैसेज में दिए गए लिंक को ना खोलें। गलती से लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक करने के बाद बैंकिंग डिटेल दर्ज करने से बचें। किसी भी संदिग्ध मैसेज के लिंक को कट करके ब्राउजर पर पेस्ट ना करें। अगर आपको ऐसा कोई मैसेज या मेल मिला है तो आप webmanager@incometax.gov.in पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 1-800-103-0025, 1-800-419-0025 ये इनकम टैक्स विभाग के नंबर हैं। यहाँ फोन करके भी फ्रॉड की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
ऐसा नॉर्मली टैक्सेशन डिपार्टमेंट करता नहीं है, और उसके पास ऑलरेडी आपका बैंक अकाउंट होता है। यदि कोई रिफंड आएगा तो अपने आप आ जाएगा, आपसे और कुछ इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए नहीं है। तो ये स्पेशली आपसे अकाउंट डिटेल्स लेना बड़ा खतरनाक होता है। इसमें आपको कोई गलत अकाउंट दिखा के कि भाई आपका अकाउंट ठीक नहीं है, इसको ठीक कर दीजिए, और उस चक्कर में वो आपसे सारी डिटेल्स भरवा लेंगे। इनफैक्ट लोग पासवर्ड भी दे देते हैं और उसके बाद सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू OTP लेकर पैसे ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हैं।
ITR रिफंड आमतौर पर रिटर्न दाखिल करने की तारीख से 7 से 120 दिनों में आता है, लेकिन अब रिफंड तेजी से आ रहा है।
इसका फायदा भी साइबर ठग उठाते हैं। ठग जल्द से जल्द लिंक पर क्लिक कर जानकारी अपडेट करने की बात कहकर टैक्स पेयर्स को जाल में फंसा रहे हैं। इसीलिए अगर आपके पास भी इनकम टैक्स रिफंड से संबंधित कोई मैसेज या मेल आया है तो उसे इग्नोर करिए और सावधान रहिए। वरुण भसीन, जी मीडिया, दिल्ली।
देश में साइबर फ्रॉड के मामले रॉकेट की रफ्तार से बढ़े हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वर्ष 2021 में साइबर फ्रॉड के 14,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए थे। डिजिटल दुनिया के दौर में बदलते समय के साथ ठगी के तरीके भी बदले हैं। एक ओर देश में डिजिटल तरीके से लेन देन बढ़ा है तो दूसरी तरफ डिजिटल फ्रॉड के मामले भी। इसीलिए स्पैम कॉल और मैसेजेस से सावधान रहिए।
और अब डीएनए में वक्त है पॉजिटिव न्यूज का। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अमृतसर के रहने वाले इकबाल सिंह ने इन लाइनों को सच कर दिखाया है। वर्ष 2009 में सरदार इकबाल सिंह एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसके बाद उनके शरीर के 75% हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। घर खर्च चलाने के लिए कमाई का कोई जरिया नजर नहीं आ रहा था। पत्नी भी गर्भवती थी, लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में इकबाल सिंह ने हार नहीं मानी और बुरे वक्त का सामना करने की ठान ली। दोनों पैर गवा चुके इकबाल सिंह ने जोमैटो से जुड़कर फूड डिलीवरी का काम शुरू किया। आंधी हो या तूफान, तेज गर्मी हो या कड़ाके की ठंड या फिर भारी बारिश, इकबाल सिंह अपनी ट्राई साइकिल पर निकलते हैं और हर हाल में खाना डिलीवर करते हैं। अमृतसर में लोग उन्हें जोमैटो वाले सरदार जी के नाम से भी जानते हैं। इकबाल के इस जज्बे और हौसले को देखकर लोग हैरान भी हो जाते हैं और उनकी तारीफ करते थकते नहीं। दिव्यांग होने के बावजूद भी इकबाल सिंह अपने परिवार का खर्च और जिम्मेदारी जिस तरह से संभाल रहे हैं, वो ऐसे लोगों के लिए मिसाल बन गए हैं जो हर बात पर अपनी किस्मत को कोसते हैं। और अब आज का प्रेरक विचार। अंग्रेज इतिहासकार थॉमस फुलर ने कहा था कि दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, और यही एक महान व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति के बीच का अंतर है। डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे आपसे जुड़ी नई खबरों और विश्लेषण के साथ। नमस्कार।